आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। न्यू साउथ वेल्स में एक पुलिस अधिकारी समेत चार लोगों पर चाकू से हमला किया गया है। इसके अलावा दो अन्य लोग भी इस वारदात में घायल बताए जा रहे हैं। एक गाड़ी में एक महिला के साथ जा रहे एक पुरुष ने पहले महिला पर चाकू से हमला किया और फिर खुद को भी घायल कर लिया, जिसके कारण गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सिडनी के एंगडीन में हुए इस हादसे के चश्मदीद गवाह कहते हैं कि ये पुरुष गाड़ी की खिड़कियां पीट रहे थे और इनकी शर्ट पर खून लगा हुआ था। पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की तब इन्होंने पुलिस पर भी हमला कर उनकी कलाई में चाकू मार दिया, जिसके बाद पुलिस ने टेजर गन का इस्तेमाल किया। सुपरिटेंडेंट डोनाल्ड फॉल्स का कहना है कि गिरफ्तार किए गए पुरुष और गाड़ी में घायल हुई महिला घरेलू संबंध में थे। वहीं फेडरल मंत्री बिल शॉर्टन का कहना है कि नेशनल इंश्योरेंस डिसेबिलिटी स्कीम यानी NDIS में किए गए नए बदलाव पहले से कहीं अधिक लोगों की सहायता करने में सक्षम रहेंगे। हाल ही में संसद में पारित हुए कानून में NDIS के लाभार्थियों की योग्यता में भी बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा NDIS के तहत चुकाए जाने वाले खर्चों में भी बदलाव किया गया है ताकि योजना का बेहतर नियंत्रण किया जा सके। ABC के इनसाइडर्स प्रोग्राम में मंत्री शॉर्टन का कहना रहा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए किए जाने वाले अपने निवेशों को लेकर सरकार सतत समर्पित है। दूसरी ओर उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वे गाजा के प्रवासियों का मुद्दा बनाकर इस बात से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास कॉस्ट ऑफ लिविंग से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। विपक्ष नेता पीटर डटन बार बार सरकार से मांग करते रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में वे देश में गाजा से आने वाले शरणार्थियों को न लें। उनके बयान के चलते संसद में भारी हंगामा भी हुआ और कुछ सांसदों ने पीटर डटन को नस्लवादी भी कहा। स्काई न्यूज से बात करते हुए उप प्रधानमंत्री माल्स का कहना रहा कि विपक्ष मुद्दे को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है जिससे जनता का ध्यान अहम बातों से भटकाया जा सके, लेकिन उप विपक्ष नेता सुजन ली का कहना है कि सरकार ही अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मध्य पूर्व से चिंताजनक खबरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसराइल ने अब लेबनान पर हवाई हमला किया है, ये कहते हुए कि वे हिजबुल्ला समूह के कोई भी हरकत करने से पहले ही इस मिलिटेंट ग्रुप पर अंकुश लगाना चाहते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि उनके सैन्य अनुमान में ये पाया गया कि ईरान से समर्थित ये सैन्य समूह इसराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्यवाही में इसराइल पर 320 रॉकेट और ड्रोन से हमला किया है। उनका कहना था कि ये कार्यवाही बेरूत में उनके कमांडर की हत्या के जवाब में की गई। ये हमले तब हुए हैं जब इजिप्ट में हमास और इसराइल के बीच चल रहे 11 महीने के संघर्ष के लिए संधि चर्चाएं जारी हैं। और अंत में खबरें भारत से। भारत में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल जारी है। चिनार बुक फेस्टिवल बदलते कश्मीर की तस्वीर को दिखा रहा है। बुक फेस्टिवल की शुरुआत 17 अगस्त से हुई थी जो आज यानी 25 अगस्त तक चलेगा। बता दें कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 फेज में चुनाव होंगे, जिसमें पहले फेज की वोटिंग 18 सितंबर और दूसरे फेज की वोटिंग 25 सितंबर, जबकि आखिरी फेज की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। चिनार बुक फेस्टिवल कश्मीरी युवाओं के लिए अभिव्यक्ति की बदलती प्राथमिकताओं को दिखा रहा है। पहले नेशनल लेवल के बुक फेस्टिवल के उद्घाटन के मौके पर पीएम युवा मेंटरशिप स्कीम के तहत चुने गए जम्मू कश्मीर के 5 उभरते लेखकों को सम्मानित भी किया गया। इस फेस्टिवल में एम्पैथी सर्कल और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर वर्कशॉप भी की गई और इसी के साथ स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिव राइटिंग की एक्टिविटी भी हुई। स्थानीय भाषाओं में कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक्टिविटीज कराई गई, जिसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुपालन में कश्मीरी अंग्रेजी और डोगरी अंग्रेजी में 11 द्विभाषी किताबें भी लॉन्च की गई। इसी के साथ 25 अगस्त 2024 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दीजिए वैशाली को इजाजत। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।